परंतु अन्य विभिन्न इतिहासकार ऐसे भी हैं जिन्होंने शाहजहां के काल को प्रत्येक प्रकार से देखकर यह निर्णय किया है कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल कहलाने का अधिकारी है। डॉक्टर एस आर शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल स्वीकार किया है। यह लिखते हैं, यद्यपि आरंभ में विद्रोह हुए जो शीघ्रता से दबा दिए गए, यद्यपि राज्य की सीमाओं से बाहर आक्रमणकारी विदेशी युद्ध लड़ गए जो पूर्णतया असफल रहे और जिनमें अपार धन व्यय हुआ, यद्यपि दक्षिण और गुजरात में अकाल पड़ा जिन्होंने देश के विस्तृत भूप्रदेश को बर्बाद कर दिया, और यदि दक्षिण में निरंतर युद्ध हुआ जिसका परिणाम अहमदनगर बीजापुर और गोलकुंडा पर आधिपत्य था, परंतु जिसने साम्राज्य के आर्थिक साधनों पर बहुत दबाव डाला, तब भी शाहजहां के युग में बहुत कुछ ऐसा था जो कृत्रिमय था तथा उसमें अद्वितीय संपन्नता के अनेक ऐसे संशय रहित चिन्ह थे जिनके कारण उसे साम्राज्य का स्वर्ण काल कहना न्यायपूर्ण है। अपने पक्ष का पोषण करते हुए डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, हमारा आशय शाहजहां के युग की दुर्बलताओं और बुराइयों को छिपाने का नहीं, उनको मानते हुए यह भी आवश्यक है कि हम उसके समय को संशय रहित संपन्नता को स्वीकार करें, चाहे वह संपन्नता कितने ही थोड़े समय की क्यों न हो। उनका कहना है, अपव्ययपूर्ण नौकरशाही, किसानों और मजदूरों पर अत्यधिक बोझा, राष्ट्र का दिवालियापन आदि जैसे विचार विवादपूर्ण है, और औरंगजेब के दोषों तथा मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उसे उत्तरदायी बताना तर्कपूर्ण नहीं है। उनके अनुसार इतिहासकार स्मिथ ने शाहजहां के अत्यधिक पक्ष में प्रकट किए हैं, विचारों को दुर्बल करने की उसकी इच्छाइयों अच्छाइयों को भुला दिया और उसके समय की बुराइयों पर बल दिया। वह कहते हैं, स्वयं स्मिथ जहां शाहजहां को निर्दयी दगाबाज और सिद्धांतहीन बताता है, वहां वह यह भी स्वीकार करता है कि संभवतया शाहजहां अपने युग के अन्य अधिकांश बादशाहों से बुरा न था, यद्यपि निसंदेह उनमें अच्छा भी न था। वह कहते हैं, स्मिथ ने पीटर मुंडी और बर्नियर के विवरणों के उन भागों को उद्धृत किया है जो शाहजहां के समय की बुरी स्थिति के बारे में दिए गए थे, परंतु उन्हीं व्यक्तियों के विवरणों ने उन अंशों को भुला दिया है जिनमें शाहजहां के समय की संपन्नता और गरीबों के लिए सहायता का वर्णन है। वर्नियर ने अपने विवरण में बंगाल के सूबे की संपन्नता का विस्तृत उल्लेख किया है। अन्य विभिन्न तत्कालीन और आधुनिक इतिहासकारों ने भी शाहजहां के युग की विभिन्न प्रकार से प्रशंसा की है। तत्कालीन इतिहासकार राय भारमल ने अपनी पुस्तक लुभ उत तवारीख में लिखा है, समय अकबर के समय में जिस परगने की आय 3 लाख थी, अब उसकी आय केवल 10 लाख है। यद्यपि इस शासन की तुलना में पिछले शासकों का व्यय 1/4 भी नहीं था, तब भी वासाह ने बहुत शीघ्र इतना बड़ा खजाना एकत्रित कर लिया था जितना कि उससे पहले के शासक वर्षों में कर पाते। तत्कालीन इतिहासकार खफीखा ने लिखा है, यद्यपि विजेता और व्यवस्थापक की दृष्टि से अकबर श्रेष्ठतम था, परंतु अपनी भूमि और अर्थव्यवस्था, शांति और व्यवस्था तथा राज्य के प्रत्येक विभाग के अच्छे शासन प्रबंध की दृष्टि से ऐसे किसी बादशाह ने भारत में सफर नहीं किया जिससे शाहजहां की तुलना की जा सके। टेवर्नियर, जिसने निरंतर भारत के अधिकांश भागों का भ्रमण किया था, लिखता है, शाहजहां ने एक बादशाह की भांति अपनी प्रजा पर शासन नहीं किया, बल्कि ऐसे किया जैसे कि एक पिता ने अपने परिवार और बच्चों पर करता है। शाहजहां के समय में शांति और व्यवस्था थी। वह स्वयं शासन की देखभाल करता था और उसका शासन सफल था। बर्नियर ने एक स्थान पर लिखा है, हिंदुस्तान में भूमि का प्रत्येक एकड़ बादशाह की संपत्ति समझा जाता है और एक किसान को बर्बाद करना बादशाह के राज्य पर डाका डालने के समान समझा जाता है। मोरलैंड ने लिखा है, शाहजहां का युग किसानों के लिए शांति का युग था। शाहजहां का न्याय कठोर था, परंतु वह निष्पक्ष था। एलिमस्टन ने शाहजहां के समय के बारे में लिखा है, शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था। इस प्रकार विभिन्न इतिहासकारों ने शाहजहां के शासनकाल की प्रशंसा की है। शाहजहां परिश्रमी, योग्य और न्यायप्रिय था। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि उसके समय में शांति और व्यवस्था थी। व्यवसाय, उद्योग एवं व्यापार उन्नति पर थे। किसानों की भलाई का ध्यान रखा जाता था। अत्याचारी सरकारी कर्मचारी और अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था तथा राज्य प्रगति पथ पर था। शाहजहां ने जिस विपुल संपत्ति को एकत्र किया और जिसका उसने प्रदर्शन भी किया, वह शासन की अव्यवस्थित स्थिति में अथवा जनसाधारण की निर्धनता की स्थिति में एकत्रित नहीं की जा सकती थी। शाहजहां ऐश्वर्य पसंद था। उसने 250,000 रुपये की हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई एक मशाल मुहम्मद साहेब के मकबरे को भेंट की थी। 50,000 रुपया मक्के के धर्मगुरु को भेंट किए थे और 60,000 रुपये मक्का के निवासियों में तथा 50,000 रुपये मदीना के निवासियों में बंटवाए थे। उसका तख्त ए ताउस 3 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा, 5 गज ऊंचा और 12 खंभों वाला रत्न जड़ित सिंहासन था। उसके प्रत्येक खंभे के ऊपर 2 मोर थे और उसके बीच में एक वृक्ष बनाया गया था। 7 वर्ष में तैयार किए गए इस सिंहासन में प्राय 1 करोड़ रुपया व्यय हुआ था। संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शाहजहां के पास था। इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि निरंतर होने वाले युद्धों में धन का अपव्यय होने के बावजूद भी राज्य धनवान था। बादशाह के बड़े बड़े सरदार और जागीरदार भी इसी प्रकार किसान शौकत की स्थिति में रहते थे। आसफ खां अतुल संपत्ति का मालिक था। शाहजहां के समय में आर्थिक कारणों से कोई असंतोष और विद्रोह नहीं हुआ था। दक्षिण और गुजरात के अकाल के अवसरों पर प्रजा को समुचित सहायता दी गई थी और युद्ध के अवसर पर खेती की हानि हो जाने पर बादशाह उनकी पूर्ति कर दिया करता था। ऐसे प्रमाण और उदाहरण प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार करना पड़ता है कि शाहजहां के समय में मुगल राज्य की संपन्नता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। राज्य विस्तार की दृष्टि से दक्षिण के राज्यों को अपने अधीनता में लाने में शाहजहां सफल रहा था। मध्य एशिया में सफलता न मिलना और कंधार को जीतने का तीनों प्रयत्नों का असफल होना धन का अपव्यय और सैनिक दुर्बलताएं अवश्य माना जा सकता है, परंतु उनसे राज्य पर कोई संकट नहीं आया था। साहित्यिक दृष्टि से शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि सभी भाषाओं को संरक्षण प्राप्त हुआ था और उनकी प्रगति हुई। गंगाधर और गंगा लहरी के लेखक जगन्नाथ पंडित शाहजहां के राज्य कवि थे। आचार्य सरस्वती और सुंदर श्रृंगार सिंहासन बत्तीसी तथा 12 मासा के लेखक सुंदर दास को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। कवि चिंतामणि पर शाहजहां की कृपा थी। डॉक्टर सक्सेना ने लिखा है, शाहजहां का युग प्राय उस समय से मिल जाता है जिसे हिंदी साहित्य और भाषा की प्रगति का सबसे दीप्यमान युग कहा जाता है। फारसी भाषा में भी अच्छे ग्रंथों की रचना इस काल में हुई और अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखा और अमीन काजवानी ने शाहजहांनामा लिखा। शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह स्वयं अरबी फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके संरक्षण में संस्कृत के अनेक पुस्तकों का फारसी भी अनुवाद कराया गया। मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया और इब्न हरिकिरण ने रामायण का अनुवाद किया। साहित्य के अलावा शाहजहां के समय में ज्योतिष शास्त्र, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित आदि की भी प्रगति हुई। राजकीय संरक्षण के साथ साथ व्यक्तिगत प्रयत्नों से भी इन सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। शाहजहां को सभी ललित कलाओं का शौक था। चित्रकला में यद्यपि जहांगीर के समय की भांति प्रगति नहीं हुई, परंतु शाहजहां ने जहांगीर की परंपरा को स्थापित रखा। शाहजहां गाना सुनने का शौकीन था और स्वयं भी बहुत अच्छा गाता था। उसने सुखसेन, सुरसेन और जगन्नाथ जैसे गायकों की राजकीय संरक्षण प्रदान किया, परंतु शाहजहां के समय में सबसे अधिक उन्नति वास्तुकला कोष्टक में स्थापत्य कला की हुई। इस दृष्टि से उसका काल निसंदेह मुगल काल का स्वर्ण काल था। यह सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं। उसके समय में न केवल संख्या की दृष्टि से इमारतों को श्रेष्ठता रही, बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी प्रगति हुई। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने खास और संसार प्रसिद्ध ताजमहल, लाहौर के किले में दीवाने आम, मुशम्मम बुर्ज, शीश महल, नौलखा और ख्वाबगाह तथा काबुल काश्मीर, अजमेर, कंधार आदि विभिन्न स्थानों पर बनवाई गई इमारतें, महल, मकबरे और बागीचे आदि शाहजहां के युग को वास्तुकला की दृष्टि से मुगल काल में श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं। ताजमहल की सुंदरता को सुंदरतम इमारतों में स्थान दिया गया है और मोती मस्जिद का नाम उसकी सुंदरता के कारण ही मोती मस्जिद रखा गया है। शाहजहां ने एक 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनवाई और एक दूसरे नहर, नहर साहिब फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई कोष्टक बंध को न केवल ठीक ही कराया, बल्कि उसे 60 मील और लंबा कराया तथा उसका नाम नहर ए शाह रखा। इस प्रकार शाहजहां का समय साम्राज्य विस्तार, शांति, संपन्नता और सांस्कृतिक दृष्टि से मुगल काल का स्वर्ण काल माना जा सकता है। अकबर ने जिस साम्राज्य और शासन की स्थापना की और जहांगीर ने जिसे पल्लवित किया, उसके फल शाहजहां के समय में प्राप्त हुए। विलियम हंटर ने लिखा है, शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और ऐश्वर्य की प्राकृष्ठा पर पहुंच गया। उसी प्रकार सर रिचर्ड वर ने लिखा है, शाहजहां ने 31 वर्ष शासन किया था। उस समय में उसके वंश का साम्राज्य प्रतिष्ठा और संपत्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। परंतु एक बात अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है कि राज्य में जो संपन्नता आई, उसका लाभ बादशाह और जागीरदारों को ही प्राप्त हुआ था। बहुसंख्यक किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ था, क्योंकि शाहजहां के समय में लगान उत्पादन का आधा भाग होता था और राज्य के अधिकांश खालसा भूमि कोष्टक बादशाह की भूमि कोष्टक बंद को जागीर की भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। इसके साथ ही मैं सुधीर कुमार शर्मा, BA पार्ट 3rd, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, शाहजहां को ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार।